Mantan.
नमस्कार, मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक।
जिस देश में महिमा नारियों की गाई गई आरंभ से सनातन भारतवर्ष में नारी जहां हुआ करती हैं उनका सम्मान होता है, वहां देवता रमते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में नारियों की वह स्थिति साहित्य में तो रह गई, वास्तविक धरातल पर देखने में थोड़ा कम आया। यही कारण है कि आज भारतीय संसद अपने उस अभाव की पूर्ति के लिए गहन मंथन की ओर अग्रसर है और हम नारी शक्ति वंदन के लिए भारतीय संसद की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर चर्चा होने वाली है, गहन चर्चा होगी 3 दिनों तक, उसी पर हमारा आज का यह अंक केंद्रित रहेगा।
और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए आमंत्रित हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता फरहा फैज और नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित लेखिका नीरजा माधव।
नीरजा जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।
फरहा मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
नमस्कार।
पहला सवाल आपसे ही फरहा समझना चाहेंगे कि संसद में जो एक नया इतिहास बनने वाला है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि महिला आरक्षण पर भारतीय संसद एक नया इतिहास रचने के नजदीक है, वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि यह जो कानून आने वाला है वह किस रूप में नारियों के भाग्य को बदलने में सहायक होगा।
ये जो बिल आ रहा है, सबसे पहले तो जैसे इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसके नाम को सुन के ही मुझे तो एक महिला होकर अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होती है कि इसमें नारी की शक्ति की वंदना हो रही है। और हम भारत के निवासी हैं, वहां पर अगर ऐसा काम हो रहा है, इस तरह का बिल आ रहा है, तो यह एक फक्र की बात है हमारे लिए। जहां तक मैं बात करूं इस बिल की, अगर ये बिल आता है तो इससे क्या महिलाओं में बदलाव होगा, तो वो यही है कि इससे महिलाएं जो है उनको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। जो महिलाएं आज सड़क पर अपनी आवाज उठाती है, मुद्दे उठाती है, और उनकी आवाज को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को सदन में जो है वो पुरुषों की आवाज में रखा जाता है, पुरुष उनके सवाल को वहां रखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो महिलाएं जो हैं वो अपने मुद्दों को सड़क से लेकर के सदन में स्वयं जा सकेंगी, उनकी समस्याओं को खुद रख सकेंगी, और इससे जो समाधान निकलेगा उसमें उनका योगदान रहेगा। और ये बिल जो है महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना को पैदा करेगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।
यहाँ पर अब हम नीरजा जी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। आपकी कृतियाँ समाज के उपेक्षित और विशेष रूप से कह लें जिन्हें हाशिए पर भी नहीं रखा गया बल्कि समाज से काट के किनारे रख दिया गया, हमारे किन्नर समाज के लोग, उनके लिए आपने बड़ा अच्छा उपन्यास लिखा है। उसके अलावा आपने तिब्बती शरणार्थियों की भी आवाज उठाई है। यहाँ संसद में जो यह नया कानून निर्माण की अवस्था में है उसे आप किस रूप में देखती हैं, किस रूप में यह सहायक होगा?
स्त्री के लिए हमारी भारतीय मनीषा ने और हमारे समाज ने भी 3 विशेषण उपयोग किए हैं, प्रकृति, पृथ्वी और शक्ति। अब प्रकृति को भी हम स्त्रीलिंग मानते हैं, पृथ्वी को भी स्त्री ही मानते हैं, और शक्ति तो है ही। और इसमें जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023, इसमें शक्ति के वंदन की जो बात कही गई है, तो आपको ये बता दें कि स्त्री शक्ति हमेशा से मानी गई है, उसके भीतर शक्ति है। लोम कश्यप जातक एक है, वहां पर लिखा गया है कि बलम सूर्यो बलम चंदो बलम बेला समण बलम बेला समुद्रस बलाति बलम इथियो, ये पाली में है कि चंद्रमा और सूर्य बलवान है, समुद्र की लहरें भी बलवान है, लेकिन उन सबसे बलवान स्त्री है। तो ये जो विशेषण दिए गए ये केवल किसी डर से किसी समाज ने स्त्रियों को नहीं सौंपे, बल्कि स्त्री के भीतर पृथ्वी वाला धैर्य है, प्रकृति की तरह से वह सबका भरण पोषण करती है, पूरे परिवार से लेकर एक राष्ट्र तक के निर्माण में उसकी अपनी भूमिका होती है, और शक्ति के रूप में हमारे यहाँ वो पूज्या रही है, हमेशा से उसका वंदन होता रहा है। तो यह जो हमारे जो जनप्रिय और बहुत ही संकल्प सिद्ध प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों में पास हो गया वो 2023 में, उसको लाकर और अब वो इम्प्लीमेंट होने के कगार पर है। तो ऐसे में ये स्त्री समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी है, और साथ ही साथ स्त्रियों के लिए एक चुनौती भी है कि इसका निर्वहन बहुत अच्छे से होना चाहिए। यदि वो सदन में आती हैं, वो विधानसभाओं में आती हैं, वो लोकसभा में आती हैं 33% आरक्षण के साथ, तो उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के बारे में भी उतना ही जागरूक, सचेत और संवेदनशील होना पड़ेगा।
यहाँ पर फरहत, आपके लिए हमारा ये सवाल कि संसद में प्रतिनिधित्व मिलने से पहले भी भारतीय नारियों ने, भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में कह लें या फिर उसके बाद देश आजाद होने के बाद भी नेतृत्व का बहुत सुंदर, बहुत सक्षम उदाहरण प्रस्तुत किया है, कम से कम भारतवर्ष में। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि जो हमारा ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई उसका लाभ किस रूप में मिला, और अब यह नया कानून जब बनकर निकलेगा तो किस रूप में आपको अंदाज लगता है कि वास्तविक रूप में नारियां अपनी भूमिका निभा सकेंगी?
नारियों का हमेशा से योगदान रहा है इस समाज के प्रोग्रेस में, आजादी की लड़ाई में भी, उसके बाद से भी देखने को मिला है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। यहाँ पर पुरुषों को ज्यादा अधिकार दे दिया जाता है या पुरुषों को ज्यादा स्पेस मिलता है बनिस्बत नारियों के, और नारियों को जो है वो बहुत संघर्ष के साथ में अपनी जगह इस समाज में बनानी पड़ती है। और जब कोई नारी ये संघर्ष को करती है तो ये देखिए कि नारी को दोनों में बैलेंस लेकर के चलना पड़ता है, अपने परिवार में भी और समाज में भी, और तब जा करके वो संघर्ष करके वो किसी मकाम पर पहुंचती है बनिस्बत एक पुरुष के। तो ऐसे में अगर ये रिजर्वेशन होता है तो क्योंकि इसमें एक मतलब कम मैंडेटरी हो जाएगा कि 33% जो है वो महिलाओं को आना ही आना है, उनको टिकट्स मिलना ही है, तो ये जो है महिलाओं के संघर्ष को काफी हद तक कम कर देगा। जो महिलाएं अग्रणी है, जो महिलाएं काम कर रही हैं निकल करके, क्योंकि अभी तक जैसे पार्टीज थी वो भी महिलाओं को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देती थी, और पार्टीज जो है वो महिलाओं को टिकट ना देने की वजह से उनका जो नेतृत्व है सदन में वो कम रहता था। अब अगर ये रिजर्वेशन होता है तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि इतनी प्रतिशत महिलाएं आएंगी ही आएंगी, तो वो जो चुन करके जनप्रतिनिधि वहां जाएंगी, वो जो महिलाएं जो है लीड करेंगी अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को, तो वो जब सदन में पहुंचेंगी तो वहां जाने के बाद में जितना भी वो मतलब जैसे समस्या है, एक महिला को क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या समाधान है, ये पुरुषों की बजाय एक महिला ज्यादा अच्छे से समझती है, तो ये चीजों का एक बहुत ज्यादा बेनिफिट हमारे समाज को मिलेगा। और अब अगर हम बात करें तो ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है तो वो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये उनका शुरू किया हुआ था, 2001 से उन्होंने स्टार्ट किया था, महिला सशक्तिकरण वर्ष उस टाइम पे डिक्लेयर किया था। तो तब से ये जो चली आ रही है कि भी महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ये योजना हो रही है, वो योजना हो रही है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पर अभी भी आज भी कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो काबिज हैं। तो अगर ये अधिनियम आता है तो वो महिलाओं के संघर्ष को आधा कर देगा, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, और महिलाएं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में वो आगे आएंगी, और आगे आकर के वो अपने जो है चीजों को, अपनी समस्याओं को, या उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, वो इस देश के विकास में अच्छे से योगदान रहेगा महिलाओं का।
श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मंडी कोतवाली के मोहल्ला शाह बहलोल की निवासी हैं और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं फरहा फैज, जिन्होंने तीन तलाक के मुद्दे पर एक मिसाल दुनिया के सामने रखा कि किस तरह सशक्त तरीके से आधी आबादी की आवाज, समाज विशेष की महिलाओं की समस्या को सुना जाए, और कानून ने सुना और उनके पक्ष में मामला आया। यहाँ पर आपके लिए नीरजा जी फिर सवाल कि ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं और कम पढ़ी लिखी महिलाएं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो यह नया कानून किस रूप में सहायक होगा स्थिति को, यानी जो परती जमीन है या कह लें कि एक जो बड़ी रुकावट है कि उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल पाता, चाहे जिन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाए, वह ये कानून किस रूप में सहायक होगा?
देखिए, अभी फरहा जी ने एक पक्ष बताया, यहाँ जब 35% आरक्षण की बात हम करते हैं तो थोड़ा उन चुनौतियों की ओर भी ध्यान देना जरूरी है जो स्त्रियों के सामने आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है या अच्छा हो जाएगा 33% में। अब देखिए, हमारे यहाँ जो एक पैटर्न रहा है कि टिकट किसे दिया जाता है, जिस जाति के लोग जिस क्षेत्र में ज्यादा है, और वहाँ ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जाता है। तो अगर कहीं यही सब लागू होने लगा स्त्रियों के 33% आरक्षण के लिए तो थोड़ी समस्या होगी। और दूसरी चीज, कहीं ऐसा ना हो कि स्त्री आ तो जाए सदन में, आ जाए लोकसभा में, आ जाए विधानसभाओं में, लेकिन पीछे से वो कठपुतली की तरह से किसी दूसरे के इशारों पर नाचे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्त्री शिक्षित हो, जो स्त्रियां इस क्षेत्र में आए वो शिक्षित हो, उनके पास अपनी विचारधारा हो, अपना विचार हो, निर्णय लेने की क्षमता हो। इस तरह के लोगों का भी ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा अब यहीं पर आकर शिक्षा की आवश्यकता महसूस होने लगती है कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं किसी भी नौकरी में किसी भी कार्य के लिए, तो थोड़ा इसमें भी विचार किया जा सकता है, इस पर विचार करना भी चाहिए। तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य, 33% स्त्रियां आएंगी सदन में, आएंगी हमारी लोकसभा और विधानसभाओं में, लेकिन उन्हें अपने भीतर की स्त्री चेतना को जागृत करना होगा कि उनके निर्णय पर किसी दूसरे का निर्णय हावी न हो जाए। और दूसरी चीज, आपने जो कहा कि स्त्रियों के लिए जो ये रास्ता है कैसे हम का निर्णय ले पाएंगे, तो अभी तक स्त्रियों के लिए नीतियां बनती थी, अब स्त्री स्वयं नीति बनाएगी। राष्ट्र के निर्माण में, नीति निर्माण में उसका अपना योगदान होगा। अभी तक वह नीतियों के लिए स्वयं दूसरों पर निर्भर रहती थी, तो यह एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भागीदारी और प्रतिनिधित्व में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। भागीदारी यानी हम बड़ा अधिकार ले रहे हैं, वहां पर अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं अपनी योग्यता के बदौलत, लेकिन हमें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, यानी वो हमारा दाय भाग है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके अधिकारी हैं, और वह प्रतिनिधित्व हमें दिया जा रहा है। तो अब 33% जो आरक्षण महिलाओं के लिए किया जा रहा है राजनीति में, वह एक बड़ा ही सुखद परिवर्तन है, और ये पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, क्योंकि उसमें 33% स्त्रियां भी हैं, और स्त्रियों का निर्णय हमेशा उदार संवेदनशील होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्त्रियों के भीतर करुणा, ममता, प्रेम, दया, समर्पण, त्याग, ये सारे नैसर्गिक गुण स्वयं है, प्रकृति ने दिए हैं, उसने कहीं से आयातित नहीं अपने भीतर इसको आरोपित किया है। तो इसलिए जब वो कोई निर्णय भी लेगी कानून बनाने में या नीति बनाने में, तो वो बहुत संवेदनशीलता के साथ कोई नियम या कानून या किसी निर्णय पर पहुंचेगी, क्योंकि स्त्री स्वभाव से विध्वंसक नहीं होती। और आप देखिए, आज युद्ध की जो विभीषिका है उसमें यदि स्त्रियों का नेतृत्व होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। तो आप भी इसको मानते होंगे कि स्त्रियां जब नेतृत्व में आएंगी तो बहुत कुछ संवेदनशील हो जाएगा, बहुत कुछ पारदर्शी होगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा।
फरहा जी, किस रूप में बदलाव होता, और निर्जा जी की जो विचार है उनसे कितना सहमत आप दिख रही हैं?
देखिए, निर्जा जी ने बात जो कही है वो प्रैक्टिकली ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा, अभी उन्होंने जैसे शिक्षा की अहमियत को बताया, ये ठीक है कि महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि लेडीज जो है वो किसी वजह से उतनी शिक्षित नहीं होती, लेकिन उसमें स्किल्स बड़े गजब के होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी गजब की होती है। एक जो अनपढ़ महिला है वो सिर्फ साइन करना जानती है, वो भी जब गांव देहात में जाइए, वहां जाकर के देखिए, तो वो बड़ा अच्छा काम करती है, बड़े अच्छे से अपने घर परिवार खेत खलिहान को लेकर के चल रही है, अपनी खेती बाड़ी को लेकर के चल रही है, और वो लीड करती है वहाँ एक समुदाय को भी। तो ऐसे में हम उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये जो मैंने अभी जैसे बताया था कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो हमें इस मिथक को तोड़ना है, हमें इस नेक्सस से बाहर आना है।
बहुत सार्थक चर्चा आप दोनों विदुषियों ने की है, आप दोनों महिलाओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में कैसा परिवर्तन होगा, संवेदनहीन नहीं, संवेदनशीलता के साथ, सृजनात्मक शक्ति के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ने के साथ दुनिया को एक संदेश देगा। तो श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से, आप दोनों महिलाओं का, नीरजा जी और फरहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।